चोखा मेला कितने उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं। भगवान की भक्ति किसी जाति विशेष के कब्जे की चीज थोड़ी है कि उसको होगी भक्ति उसको नहीं होगी। ये बापोती नहीं है किसी की। राम भजत बिटिया भली, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत, सियावर रामचंद्र की। सबर कुल में जन्म लेने वाली सर्वी सबरी बैकुंठ चली गई और ब्राह्मण के कुल में पालित पोषित होने वाला धुंधकारी भूत बन गया। इसलिए भैया राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत। भगवान की भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। काशी नरेश ने कहा कि अब आप लोग न्याय चाहते हैं क्या करें। बोले सिंहासन पर रख दो रैदास जी के वो गोलमटोल भगवान, उनके ठाकुर जी रख दो सिंहासन पर। राजा ने कहा ठीक है, जिसकी प्रार्थना सुनकर जिसके पास ठाकुर जी आ जाएंगे वही पूजा का अधिकारी माना जाएगा। बेचारे वेद पाठ करते करते उनके कंठ सूख गए। स्तोत्र पाठ वेद पाठ जितना उनको आता था सब उन्होंने विचारों ने, ब्राह्मणों ने कोई कसर नहीं छोड़ी भगवान को बुलाने में, पर भगवान का सिंहासन टस से मस नहीं, भगवान हिले तक नहीं। और रैदास जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कृत स्कूल में प्रवेश ही नहीं किया था, हैं? पढ़े लिखे नहीं थे रैदास जी। भोले भाले सीधे साधे सरल भगवान के भक्त। राजा ने कहा पूरी रात बीत गई, अब सवेरे का समय आने वाला है, आप लोगों का सारा उद्योग व्यर्थ सिद्ध हुआ, आप लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान नहीं आए, अब रैदास जी को अवसर मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, अब जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगी तो रैदास जी को अवसर दो। रैदास जी से कहा अब आप पुकारो भगवान को। रैदास जी रो पड़े, भारी हृदय में दैन्य भाव है, हे नाथ मैं हीन, हीन जात मेरी माधव राय, मैं हीन हूं, मेरी जाति बड़ी हीन है, हे नाथ आप पतित पावन हैं। रो पड़े रैदास जी। बोले महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, उत्तम कुल में जन्म भी नहीं है, विद्या रूप आदि समस्त गुणों से रहित हूं। आहा, रैदास जी ने अपना एक तारा संभाला और रोने लगे। भगवान आंसुओं की भाषा बहुत अच्छी समझते हैं, संस्कृत और दूसरी भाषा भले ही न समझे, आंसुओं की भाषा भगवान बहुत अच्छी समझते हैं। रैदास जी रोने लगे और उन्होंने कहा पतित पावन नाम, पतित पावन नाम आज साँच कीजिए, पतित पावन नाम आज साँच कीजिए, विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलाए लीजिए, विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलाए लीजिए। ठाकुर जी से रहा नहीं गया। अब इसमें क्या संस्कृत है, कोई संस्कृत भाषा तो नहीं है। रो करके इतना ही कहा हे नाथ वैकुंठ साकेत गोलोक में पतित पावन नाम सत्य हो नहीं सकता, क्योंकि वहां कोई पतित है ही नहीं, तो आप पतित पावन कैसे बनेंगे। आज आपका नाम सच्चा होने का अवसर आ गया, रैदास जैसे पतित को हृदय से लगाकर पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, विलंब छाड़ी आइए। नहीं आना हो तो जे विधि पुरु प्रसन्न मन होई करुणा सागर की जय सोई, लेकिन विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलाए ली। अथवा आप अपनी अपने चरणों में बुला लीजिए। हे नाथ, आपकी उपासना से मैं एक दिन भी दूर नहीं रह सकता, एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। महाराज सिंहासन उठ करके आया और रैदास जी की छाती से लग गया। अब तो महाराज काशी के नरेश अपनी पाग उतार करके मस्तक धरती पर रखे हुए हैं। धन्य है भक्तराज, धन्य है। और महाराज उस समय काशी के बड़े बड़े विद्वान उन्होंने अपने वर्णगत अभिमान को त्याग करके रैदास जी को नमस्कार किया। नाभाजी लिख रहे हैं, वर्णाश्रम अभिमान तज, वर्णाश्रम अभिमान तज, पदरज बन नहीं जा सुखी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास की। गोस्वामी जी ने कहा, भैया हमारी तो दृष्टि में भगवत प्रेम ही सर्वोपरि वस्तु है। भगवान को प्रेम से पुकारो, चाहे जिस गारी में, चाहे जिस वाणी में। महाराज जी कहां तक कहें, प्रेम से गारी देना आ जाए तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे। प्रेम से गारी देना आ जाए तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे। मिथिला में ठाकुर जी रीझे कि नहीं बोलो। और इतनी ज्यादा कहीं कहीं गारी खाने का अवसर मिला ठाकुर जी को कि नहीं? कहीं नहीं, कहीं अवसर नहीं मिला इतनी ज्यादा गारी खाने का। सबसे ज्यादा गारी खाई ठाकुर जी ने मिथिला में। और सबसे ज्यादा प्रसन्न भये कहां? सबसे अधिक प्रसन्न रहे ठाकुर जी मिथिला में। ब्रज में भी बड़े प्रसन्न है ठाकुर जी, क्योंकि ब्रज में भी ठाकुर जी को खूब, ब्रज में भी ठाकुर जी को खूब महाराज गारी देने वाले खूब मिले ब्रज में, इसलिए ठाकुर जी खूब प्रसन्न रहे। और इस सुख का अभाव द्वारिका में हो गया। द्वारिका में कोई गारी देने वाला नहीं। हम अपने मन से नहीं कह रहे, महाभारत का एक प्रसंग है, ग्रंथ पढ़ करके देख लीजिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हमको कोई कटु वाणी बोले, तब उन्होंने अपने संकल्प से भीमसेन दादा का आवाहन कर लिया। और भगवान द्वारिका में विराज रहे थे और भीमसेन आए भगवान से मिलने के लिए, तो ठाकुर जी ने जानबूझकर द्वारपालों से कह दिया, उनको आदरपूर्वक वहीं बिठा लेना, कहना अभी मिलते हैं, अभी मिलते हैं। ज्यादा प्रेम होता ना तो उसको फिर सहन नहीं होता, वो चाहता जल्दी पहुंच जाए। भीमसेन बैठ गए, मन में सोचने लगे, आज तक तो कभी हमको देवड़ी पर रोका नहीं गया, अब द्वारकाधीश बड़े आदमी हो गए हैं, अब इनकी मर्यादाएं कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ गई हैं, इसलिए मिलने में आज इतनी देरी हो रही है। भीमसेन को थोड़ी गुस्सा आई, बोले इतनी देर हो गई क्या कर रहे हैं? सेवक ने जाके कहा, महाराज तो लाल पीले हो रहे हैं। तो भगवान हंसने लगे, बोले कह दो भोजन कर रहे हैं, कह दो जीम रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अब भीमसेन तो इसीलिए आए थे कि भगवान के संग बैठकर भोजन करेंगे। अरे बोले इतनी देर से हम बैठे हैं, हमको पानी तक की नहीं पूछा और खुद भोजन कर रहा है। और ठाकुर जी बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला लाओ, रबड़ी लाओ, मालपुआ लाओ, गुलाब जामुन लाओ, नाम और लें। भीम दादा का गुस्सा बढ़ा, भीम दादा खरी खोटी सुनाने लग गए, बोले ये बड़ा असभ्य है, अशिष्ट है। अरे बचपन में गैया चराई है, कहाँ करे, कहाँ जाना है बिचारो, चोर चोर के लूट लूट के दूध दही माखन मिश्री खाइए, ये बड़ों का आदर करना क्या, जाने क्या क्या कहने लग गए। अब तू खाए ले, अब मैं जा रहा हूं। भीमसेन जब उठ के जाने लगे, ठाकुर जी दौड़ के, दादा दादा कहां जा रहे हो, हम तो सवेरे से बाल भोग तक नहीं किया है। अरे बढ़िया बढ़िया रसोई बन रही कि आपके साथ बैठ के जीवेंगे, पर ऐसा नाटक क्यों किया? बोले यहां कोई हमको गारी देने वाला नहीं, इसलिए तो तुमको बुलाया था कि थोड़ा सा बोलो वृंदावन बिहारी। पर भैया ऐसा प्रेम होए वो गारी दे सकता है, सबको गारी देने का अधिकार नहीं है। अब सबको गारी देंगे तो क्या दशा होगी, सुषपाल जी से पूछ लेना। हाँ, बिना प्रेम के गाली दोगे तो क्या दशा होगी, शिशुपाल जी से पूछ लेना उनकी क्या दशा भाई। हमारे वृंदावन के रसिक आचार्य जिनका प्रसिद्ध पद है सखी हो श्याम रंग रंगी, गदाधर भट्ट जी महाराज, उन्होंने भी अपनी वाणी में ठाकुर जी को गाली दिए। सुंदर श्याम सुजान सिरो मणि देव कहां कही गारी हो, सुंदर श्याम सुजान सिरो मणि देव कहां कही गारी, बड़े लोग के औगुण बरनत सकुच उठत मन भारी हो,
बड़े लोग के औगुण वर्णत सकुच उठत मन भारी हो,
सुंदर श्याम सुजान सिरो मणि देव कहां कही गारी हो,
सुंदर श्याम सुजान सिरो मणि देव कहां कही गारी हो,
को कही सके पिता को निर्णो जाति पाति को जाने हो,
को कही सके पिता को निर्णो जाति पाति को जाने हो,
जाके मन जैसे आवे तैसे भांति बखाने हो,
जाके मन जैसे आवे से भांति बताने हो।
बात झूठी है क्या, भगवान की जाति का निर्णय कर सकते हो? मत्स्य कच्छप बारा इंद्र सिंह सब कुछ तो बन गए, पिता का निर्णय कर सकते हो? खंभ से प्रकट हुए करो निर्णय पिताजी का, बोलो वृंदावन बिहारी, खंभ से प्रकट भाई पिताजी का निर्णय करो। और क्या है, माया कुटिल नटी तन चितवत कौन बड़ाई पाई हो,
माया कुटिल नटी तन चितवत कौन बड़ाई पाई हो,
यही चंचल सब जगत बिगयो जाता भई हसाई हो,
यही चंचल सब जगत हो।
और तुमने क्या किया, बोले तुम पुनि प्रगट होए बारे ते कौन भलाई कीनी हो,
तुम प्रगट होए बारे ते कौन भलाई कीनी हो,
मुक्ति बधु उत्तम जन लायक सो असुरन को दीनी हो,
मुक्ति बधो तम जन लायक सो असुरन को दीनी हो,
सो अधमन को दीनी हो,
सो अधमन को दीनी हो,
पूतना अघासुर बकासुर ये सब उत्तम थे कि अधम अधमाधम थे, उनको भी मुक्ति दे दी। बसी दस मास गर्भ माता के यही आशा करी जाए हो,
बस दस मास गर्भ माता के यही आशा करी जाए हो,
सो घर छाड़ी जीव के लालच भय हो पूत पराए हो,
सो घर छाड़ी जीव के लालच भय हो पूत पराए हो।
एक प्रेमी के यहां हम गए, बहुत अच्छे संत हैं सदग्रस्त, भगवान की बड़ी कृपा उन्हें प्राप्त है, भगवान की प्रत्यक्षानुभूति भी उनको हो चुकी है, बड़े प्रेमी महानुभाव हैं सौराष्ट्र के, उनके ठाकुर जी का नाम लिखा था उनके यहाँ श्री चटोरा नंद नंदन जू। मैंने कहा भैया ऐसे ठाकुर तो कहीं नहीं देखे, ये चटोरा ठाकुर वे जो महानुभाव हैं बिल्कुल अपरिग्रही है, बहुत सूक्ष्म में अपना निर्वाह करने वाले और नित्य सत्संग होता है, वो तो कभी किसी से किसी वस्तु के लिए चाहते नहीं कहते नहीं, फिर भी उनके यहां सत्संग में कभी कोई ठाकुर जी के भोग के लिए पकौड़ी बना के ला रहा है, तो कोई हलवा बना के ला रहा है, तो कोई बर्फी, कोई पेड़ा, कोई लड्डू, कोई गुलाब जामुन। बोले महाराज नए नए रोज रोज मंगवाते हैं, खाते हैं, इसलिए इनका नाम धर दिया चटोरा। सो घर छाड़ी जीभ के लालच भय हो पूत पराए हो।
सो घर छाड़ी जीभ के लालच भय हो पूत पराए हो।
सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि देऊ कहाँ तक गारी हो।
सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि देऊ कहाँ कही गारी हो।
बड़े लोग के औगुण वर्णत सकुच उठत मन भारी हो।
बड़े लोग के औगुण वर्णत सकुच उठत मन भारी हो।
और बारे ते गोकुल गोपिन के सुने घर तुम डाटे हो।
बारे ते गोकुल गोपिन के सुने घर तुम डाटे
बैठे तहां निशंक रंकलो दधी के भाजन चाटे हो।
बैठे तहां निशंक रंकलो दधी के भाजन चाटे हो।
अरे महाराज अब ज्यादा इनकी बड़ाई न की जाए, वही अच्छा है। अंतिम कह देते हैं, बहुत गालियां हैं। बरनो कहां जथामति मेरी बेदहु पार न पावे हो।
बरनो कहां जथामति मेरी बेदहु पार न पावे हो।
भट्ट गदाधर प्रभु की महिमा गावत ही उर आवे हो।
भट्ट गदाधर प्रभु की महिमा गावत ही उर आवे हो।
सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि देऊ कहाँ कही गारी हो।
सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि देऊ कहाँ कही गारी हो।
बड़े लोग के औगुण वर्णत सकुच उठत मन भारी हो।
बड़े लोग के औगुण वर्णत सकुच उठत मन भारी हो।
हाँ, इसलिए महाराज प्रेम से गारी भी दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और ये प्रेम बातों से नहीं मिलता। प्रेम स्वर्ग ते उतर्यो। स्वर्ग माने भगवान के धाम से, यहां स्वर्ग लोक नहीं, ऊपर से। प्रेम स्वर्ग ते उतर्यो ऊपर कीनो गौन गली गली खोजत फिरे बिन सिर को धड़कों। गली गली खोजत फिरे बिन सिर को धड़कों। बिना सिर का धड़ मतलब अहंकार शून्य कोई मिले तो सही। मैं और मेरेपन के अभिमान से शून्य कोई भाग्यशाली साधक मिले तो उसे प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम बिकंता मैं सुना माथा साटे हाथ बूझत विलम न कीजिए तुरत दीजिए काट। जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी या में द्वेन समान। प्रेम कैसे मिले? बोले श्री राधा बाबा जैसे प्रेम रस सिंधु में डूबे हुए महात्मा की कृपा हो जाए तो प्रेम मिल जाए। पूज्य बाबा का जो पावन मंगलमय दिव्य चरित्र है, हम एक बार पढ़ चुके हैं, अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य। श्री बंका जी ने बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, और इतनी सुंदर शैली में लिखा है कि एक बार ग्रंथ उठाने के बाद फिर उसके बस की बात नहीं कि फिर वो पुस्तक रख दे। इतना बढ़िया शैली में, बहुत सुंदर, बड़ी भगवान की। ये संतों के चरित्र ही जीवन में भगवत प्रेम को प्रकट कर रहे। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ो। श्री चैतन्य चरितावली गीता प्रेस से प्रकाशित है, श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी का ग्रंथ। महाराज जी कहते थे, चैतन्य चरितावली पढ़ो, समझ में आ जाएगा प्रेम किसको। श्रीमन महाप्रभु जी के चरित्र में संपूर्ण प्रेम तत्व प्रकट हुआ है। इसलिए भैया, प्रेम मुख्य वस्तु है। प्रेमी संतों का संग, प्रेमियों की चर्चा, प्रेमियों की कृपा, जैसे विद्वान की कृपा से विद्या की प्राप्ति, धनवान की कृपा से धन की प्राप्ति, ऐसे ही ऐसे प्रेमी संतों के अनुग्रह से भगवत प्रेम की प्राप्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक रविदत्त नामक एक व्यक्ति ऐसा फिर भी रह गया काशी में, जिसके चित्त में तुलसीदास जी के प्रति घोर मात्सर्य था, बड़ी ईर्ष्या थी। उसने वो आशु कवि था, सर्वशास्त्र विशारद था और बंगाल का था। वह नवद्वीप से चलकर के काशी में आया था और वहीं काशी वास कर रहा था। वह तमोगुण प्रधान तांत्रिक था, साधक था। तुलसीदास जी की प्रतिष्ठा उसके लिए ईर्ष्या का विषय बन गई। उसने तुलसीदास जी महाराज से शास्त्रार्थ की चुनौती दी, कहा तुम ये नाम का प्रचार, भक्ति का प्रचार करते हो, सब बिल्कुल गलत बात है। गोस्वामी जी बहुत टालते रहे कि इससे हमें चर्चा न करनी पड़े। अंत में जब वो ज्यादा ही पीछे लग गया तो 80 घाट पर गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, अच्छा तुम चर्चा कर ही लो, खुलकर प्रश्न करो, हम समाधान करेंगे। बड़े बड़े पंडितों का समाज इकट्ठा हुआ और गोस्वामी जी के वैदुष्य के आगे रवि दत्त को पराजित होना पड़ा। अब महाराज वो पराजित हो तो गया, पर उसने एक निश्चय और कर लिया। उसने कहा, मेरा भरी सभा में अपमान हुआ है, मैं पराजित हुआ हूं, मैं तुलसीदास जी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा, धोखे से मार डालूंगा। एक समय की बात है, गोस्वामी जी महाराज गंगा जी के जल में, कटी पर्यंत जल में खड़े होकर के जप कर रहे थे और अंधेरा एकांत अवसर देख करके वह लाठी लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर प्रहार करने के लिए चला है। उसने निश्चय किया कि आज तो उनको मार ही डालेंगे, लेकिन वहां उनको दिखाई पड़ा कि एक लाल लाल वर्ण का कोई विराट पुरुष गदा लेकर खड़ा हुआ, हनुमान जी खड़े थे। अब तो महाराज अपना सा मुंह लेकर वह लौट आया। एक कहावत है कि जेवरी जल भले ही जाए पर उसकी ऐंट नहीं जाती है, जेवरी जल भले ही जाए पर ऐंठ उसकी जाती नहीं है, उसका अमर शमशान नहीं। उसने सोचा कि अब क्या करें, किसी कीमत पर तुलसीदास जी को काशी से बाहर निकालना। तब वह आया, तुलसीदास जी के चरणों में गिर करके रोने लग गया। बोला, महाराज मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे बहुत द्वेष किया, अब तो मुझे वैराग्य हो गया है बिल्कुल, आप जो कहेंगे सो ही करूंगा, आप कृपा करके थोड़ी हमको सेवा का अवसर जरूर दें। बड़ी भक्ति दिखाने लग गया। तुलसीदास जी ने उनका बहुत आदर किया, पंडित जी इतने ग्लानि में क्यों भर रहे हो, आओ आओ आपका स्वागत है। महाराज ये गोस्वामी जी की सेवा में रहने लग गया, आकर के सेवा करें, बिना ही जाने पूछे झाड़ू पोछा लगा दे और मिट्टी ले आवे, हाथ जोड़े खड़ा हो जाए, रोने लग जाए। एक बंगला भाषा की कहावत है, अधिक भक्ति चोरेर लखन, ज्यादा भक्ति कोई दिखावे तो सावधान हो जाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये चोर का लक्षण है। स्वामी जी एक सच्ची घटना सुनाए ग्वालियर शहर की। एक रामायणी जी थे, उन रामायणी जी का हमने दर्शन किया, हमारे महाराज जी से उनका बड़ा प्रेम था। झांसी के पास उनका गांव था, बहुत अच्छे रामायणी थे, पुराने समय के रामायणी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की द्वादश ग्रंथावली उनको कंठस्थ की और बड़ी सुंदर बहुत अच्छी कथा कहते, बड़े भोले थे, बड़े सरल थे। हमारे महाराज जब उस क्षेत्र में जाते तो वे आ जाते और महाराज जी को कुछ सुनाते, महाराज बड़े प्रसन्न थे। गरीबी ब्राह्मण का आभूषण है, ब्राह्मण को बहुत धन न हो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा, और धनहीन ब्राह्मण भजन न करे ये उसके लिए सबसे भारी दुर्भाग्य की बात है। सांसारिक सुख का अभाव भगवान के भजन के लिए होता है, जो सांसारिक सुखों में फंसे हैं उनसे भजन बनता नहीं। भगवान कितने दयालु हैं, भजन के लिए हमें सुविधा दे रहे हैं, सांसारिक सुख भगवान ने हमारा छीन लिया, इससे बड़ी भगवान की क्या कृपा हो सकती है, ऐसा अनुभव करने वाले को भक्त कहते हैं। तो सामान्य मध्यम वर्ग के ब्राह्मण ग्वालियर में कथा कहने गए, भरत चरित्र कहा उन्होंने और खूब लोग सुनने, श्रोता खूब आते थे सुनने के लिए, महीना भर कथा कही उन्होंने। और उनको निष्काम भाव से, कोई ये नहीं कोई तय करके गए, वहां कथा होने लग गई, जो आ जाता उसी को संग्रह किया। तो अब कथा कल पूरी करके जाना है, तो उनके मन में आया कि घर में थोड़ा बहू बेटियों की शिकायत रहती है कि तुम कुछ आभूषण नहीं बनवाते हो, वैसे तो पैसा उतना बचता ही नहीं, अभी कुछ आ गया है शहर में कथा भई है, तो घर की बहू बेटियों के लिए कुछ यहाँ से आभूषण ले चलें। तो संकोची भी बड़े थे, बोले किसी को पूछ के जाना ठीक नहीं, अकेले ही चले गए सुनार की दुकान पर और कुछ आभूषण ले आए और थैला में आभूषण रखे और फिर जाने का निश्चय कर लिया कि अब कल जाना है। आज कथा पूरी हो गई, दूसरे दिन जाने के लिए थे तो बस स्टैंड पर, बस अड्डा जो है वहां से झांसी के लिए बस जाती थी ग्वालियर से, रोडवेज की बस टिकट उन्होंने करा लिया, बस में बैठना ही चाहते थे, अभी बस को जाने में देरी थी। तब तक एक महान भाव सामने दिखाई पड़े, बढ़िया सफेद कुर्ता पैजामा पहरे हुए, देखने में बड़े भले आदमी लग रहे थे, और उन्होंने रामायणी जी को देखा तो देखते ही लंबी दंडौत किया, साष्टांग प्रणाम। अरे उन्होंने कहा, महाराज ऐसा मत करो, यहाँ रोड है, आपके सफेद कपड़ा खराब हो जाएंगे। अरे बोले महाराज, इसी धूल के लिए तो हम तरस रहे हैं, आपने तो पूरे शहर का उद्धार कर दिया, इतनी बड़ाई करने लगे जिसका कोई ठिकाना नहीं, आंख में आंसू चल रहे उनके। महाराज ऐसी कथा भरत जी की, क्या कहना, रस बरसता महाराज आपकी वाणी से, मृत बरसता। रामायण जी ने कहा, भैया हमने एक महीना कथा की, तुम तो कभी दिखाई नहीं पड़े, हमने देखा ही नहीं श्रोताओं में। अरे महाराज, बड़े बड़े आदमी आगे बैठते थे, हम गरीब आदमी पीछे बैठ के सुनते थे, आपने नहीं देखा, आपकी दृष्टि हम पे नहीं पड़ी, हमारा दुर्भाग्य है, पर आज आपको हमारे घर जरूर चलना पड़ेगा, हम मान नहीं सकते, आपको चलना पड़ेगा। बोले भाई हमको जाना, हम टिकट करवा लिया। बोले हमको तो पता है, इसलिए तो आप भले दो मिनट के लिए चलो, हमारे घर चलो। बोले हम नहीं जाएंगे। अरे महाराज, आपने हमको सेवा का अवसर नहीं दिया, बड़ा बुरा हुआ, ऐसा करो आप दुकान पे कुछ खा लीजिए। उन्होंने कहा, हम दुकान का कुछ खाते नहीं। बोला महाराज, बढ़िया अच्छे पीतल के ग्लास में और गन्ने का जूस, उसमें क्या अशुद्धि हो तो पी लो। आखिर तो ब्राह्मण देवता और उनका आग्रह, रस पीने को कौन मना करे। बोले ठीक है, तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो रस पी लेंगे। अब दुकान की ओर ले चला और उनका थैला हाथ से, नहीं थैला, अरे महाराज लोग क्या कहेंगे, गुरुजी सामान लेके चल रहे हैं और जजमान चेला वो खाली हाथ चल रहा है, हमारी तो नाकी कट जाएगी। तो हठ पूर्वक उनका थैला ले लिया। अब कोई क्या जाने कैसे लेके भग जाएगा, और बिठा करके कुर्सी पर उनके हाथ में गिलास थमा दिया और थैला लेके। अब उन्होंने प्रेम से धीरे धीरे गन्ना का रस पिया। रस पीने के बाद वो गन्ने के रस वाला बोला, पंडित जी पैसा लाओ। अरे भाई भगत थैला में है पैसा, भगत हुए तब ना, भगत हो गए, नहीं मिला भगत। अब कपड़े भी उसी में थे और पैसा भी उसी में, एक रुपया नहीं था उनके पास, केवल रोडवेज की टिकट थी बस। बोले भाई देखो, कोई परिचित आदमी देख लेगा तो हमारी और बेइज्जती होगी, हम कुर्ता धोती उतार के दे देंगे, लंगोट में चले जाएंगे, हमारी बेइज्जती मत करो। वो हमारा थैला तो कोई ले गया भगत, वो तो ठग था ही ले गया। आखिर बेचारे बैठ करके वहां तक तो आए बस में, और बाकी पैदल पैदल अपने गांव पहुंचे। महाराज जी को ये घटना उन्होंने सुनाई, बोले महाराज जी अब प्रेम से भी किसी की आंख में हम आंसू देखते हैं और हमारे दंडोत प्रणाम करके आंख में आंसू भर लेता है, तो हमको तुरंत उस दृश्य की याद आ जाती है कि हम बस अड्डे के सामने खड़े हैं और एक सफेद कुर्ता पजामा वाला व्यक्ति चरणों में हमारे पड़ा हुआ है। वो कहता, महाराज हम बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। तो भैया भक्तों से बोले अब हमको इतना मन भर गया, वो रामायणी जी कहते। तो जैसा वो भगत था ना, रामायणी जी को ठग लिया बेचारे भोले भाले सल रामायणी जी, ऐसे ही ठगने वाला आ गया रविदत्त। तुलसीदास जी को इतनी सेवा करके उसने रिझा लिया। कहा है ना, नवन नीच के अति दुखदाई। गोस्वामी जी ने एक दिन मन में विचार किया कि ये पंडित जी इतने बड़े विद्वान होकर के निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, तो जरूर इनको कोई इच्छा होगी, पूछ लें हम इनकी क्या सेवा कर सकते हैं। बोले रविदत्त जी, आपकी सेवा से हम बड़े राजी हैं, बड़े प्रसन्न हैं, आप की कोई इच्छा हो तो आप बतावें, हम उसको पूरी कर देंगे। उसने कहा, महाराज आप हमारी इच्छा पूरी कर देंगे? हाँ जरूर कर देंगे, तुम भैया इतने प्रेम से सेवा कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा पूरी क्यों नहीं करेंगे। रविदत्त बोला, आप अविलंब इसी समय काशी छोड़ दीजिए और फिर कभी काशी की सीमा में प्रवेश मत करना, हमको यही दे दीजिए। क्या कहा उसने, इसी समय काशी छोड़ दो और द्वारा काशी में घुसना नहीं, यही हमको दे दो। ऐसी होती है दुष्ट व्यक्ति की सेवा, पर धन्य है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, उनके चित्त में तनिक भी उसके प्रति आक्रोश नहीं आया, क्रोध नहीं जगा। मन में सोचा, कर्ता कारयिता भगवान है, भगवान का इसमें भी कोई मंगलमय विधान छिपा होगा। अरे भाई हमारे रहने से यहाँ के लोगों को पीड़ा है तो क्यों रहना। यस्मान नोद विजते लोको लोकान नोद विजते चया हर सामर्ष भयोद्वेगी मुक्ता यसच मे प्रिया। भक्त का तो लक्षण ही है, क्यों किसी को उद्विग्न करना। वो स्वामी जी वहां से चल पड़े, अपनी कुटिया का सामान भी नहीं उठाया, एक जैसे थे वैसे ही गोस्वामी जी उठ करके चल पड़े। लेकिन काशी के वियोग का अनुभव जरूर हुआ, मैं काशी छोड़कर जाऊंगा, धाम के प्रति अनुराग हो जाता, तो काशी भी भगवान की पुरी है, सप्तपुरियों में मुक्तिदायिनी पुरी है। काशी का वियोग व्याप्त हो गया और उन्होंने काशी को प्रणाम करते करते, काशी की सीमा पर खड़े जाने के लिए काशी को प्रणाम किया, हे काशीपुरी आपके प्रति हमारा कोई अपराध अब तक जो बना हो आप कृपा करके क्षमा कर देना। गोस्वामी जी ने काशीवास कैसे किया ध्यान देकर सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंतिम क्षण तक काशी में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी काशी की सीमा के भीतर मलमूत्र त्याग नहीं किया, थूका नहीं, मलमूत्र का त्याग नहीं किया। गंगा पार करके उस पार शौच करने जाते थे और इतना सूक्ष्म आहार गोस्वामी जी लेते थे कि एक बार ही शौच जाना पड़े, एक बार ही लोशन का जाना पड़े। ऐसे साधक गोस्वामी तुलसीदास जी 80 घाट पर नौका रख रखी थी, उसको चलाकर पल्ली पार चले जाते, यही प्रभाती शौच आदि की सारी क्रिया कुल्ला आदि करके फिर गंगा पार करके आ जाए। ये गोस्वामी जी की सावधानी है काशीपुरी के प्रति। हम लोग तो धाम में रह करके तनिक भी सावधान नहीं रहते हैं। गोस्वामी जी का हृदय व्याकुल हो गया और गोस्वामी जी ने उस समय शंकर जी को उलाहना दिया।
देव सैरी सेवो बाम देव गाँव राव रे, देव सैरी सेवो बाम देव गाँव राव रे, नाम राम ही के मांगी उदर भरत हो, नाम राम ही के मांगी उदर भरत हो। देवे जोग तुलसीना लेत काहू की कछूक, देवे जोग तुलसीना लेत काहू की कछूक, लिखिना भलाई बाल पोचना करत आलिखी ना भलाई भाल पोचना ऐते पैर पूजो को राव रोहे जोर करे, ऐते पैर पूजो को राव रोहे जोर करे, ताको जोर देव दीन वारे भूदरत आता को जोर देव वारे भूदरत, पाई के उराहनों उराहनों ना दीजे मोई, पाई के उराहनों उराहनों ना दीजे, काल कला काशीनाथ काहे निवरत, काल कला काशीनाथ काहे निवरत।
बहुत प्यारा भाव, अर्थ आपको समझ में आया होगा, फिर भी संक्षिप्त भाव कह देते हैं। देव सरी सेवो हे विश्वनाथ जी, गंगा जी के तट पर रह के गंगा जी में स्नान गंगा जल पान करता हूं, और बाम देव गांव राव रे ही, हे बामदेव, शंकर जी का नाम है ना बामदेव, हे बामदेव आपके गांव में आपके घर में काशी में रहता हूं, और नाम राम ही के मांगी उदर भरत, ब्राह्मणों के द्वार पर जाकर के भिक्षा ले आता हूं, संग्रह भी नहीं रखता, राम राम श्री राम कहकर के भिक्षाटन कहकर करके अपना उदर पूर्ति कर लेता हूं। नाम राम ही के मांगे उदर भरत, और दीवे जोग तुलसी ना लेत काहू की कछुक, ऐसा नहीं है कि तुलसीदास कभी किसी से कुछ चाहता हो। तुलसीदास जी कहते हैं जो लेने योग्य वस्तु है, जिसकी मनुष्य के जीवन में अनिवार्य आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं को भी हम किसी से नहीं चाहते। तुलसीदास जी कहते द्रव्य का स्पर्श नहीं करते, और कोई वस्तु हमें चाहिए नहीं, अत्यंत अकिंचनता पूर्वक अपना निर्वाह करते हैं। ऐसा नहीं कि देने वालों की कमी हो, बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि तुलसीदास जी को हम कुछ दें, सच्ची बात तो यह मिलता उसी को है जो नहीं चाहता, और जो बहुत चाहते हो तो बाबूजी भगवान भला करेगा, दूधो नहाओ पूतो फलो एक रुपया दो रुपया दे दो, उसको तो कहना पड़ता फिर भी नहीं मिलता। गोस्वामी जी कहते हैं देने वाले भी काशी में बहुत हैं, लेकिन एक बार हमारी 24 घंटे में उदर पूर्ति हो जाए उससे अधिक में कभी किसी से कुछ लेता नहीं। और इतने और इतना ही नहीं, मेरे माथे पर विधाता ने भलाई नहीं लिखी, बचपन से लेके अब तक संकट ही संकट झेले हैं, इसलिए पोचना करता हूं, उसके लिए भी मैं बिल्कुल उलाहना नहीं देता। ठीक है, भलाई नहीं लिखी तो नहीं, हमने अच्छे काम किए ही नहीं होंगे तो कहां से हमारे जीवन में सुख आवे। बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी मैं कोई इतराज नहीं करता। किंतु इतने के बाद भी किसी की बुराई भलाई नहीं, सबसे दूर रहकर भजन करना चाहता हूं, आपके गांव में रह